सुबह की पहली किरण ने उसके चेहरे को स्पर्श किया। मन, जो अतीत की गहराइयों में कहीं भटक रहा था, वर्तमान में लौटा तो आज की हकीकत को अपने सामने खड़े मुंह चढ़ाते पाया। लबों पर बिखरी वो मुस्कान सिमट गई और चेहरे पर कुछ अजीब से भाव उभरे। राधिका ने निगाहें आकाश की ओर घुमाई, जो हल्के नीले, पीले और केसरिये रंग में रंगा था। सूरज की सुनहरी किरणें चहुं ओर प्रकाश फैला रही थीं। पंछी अपने घोंसलों से निकलकर आकाश में विचरण करते हुए मधुर धुन छेड़ रहे थे। सुबह की लालिमा समेटे आकाश, सूरज की ताजगी भरी किरणें, मन को लुभाती फिजा, जिस्म को सिरहन से भरती सर्द हवाएं, चहचहाते खुले गगन में स्वच्छंद उड़ते पंछी, बड़ा मनमोहक दृश्य था जो उसके अचेत मन को नई ऊर्जा से भर गया था। राधिका ने अपने पॉकेट से फोन निकाला और उसमें सॉन्ग प्ले किया। उसने अपनी बाहों को खुद पर लपेटा और अपनी आंखें मूंद लीं। दिल मेरा चुराया क्यों, जब ये दिल तोड़ना ही था, हमसे दिल लगाया क्यों, हमसे मुंह मोड़ना ही था। गाने की धुन बजी। इसके साथ ही बंद पलकों के आगे माधव के साथ बिताए पल उभरने लगे। दिल में तेज दर्द सा उठा और झुकी पलकों के नीचे से कुछ आंसू की बूंद फिसलकर उसके गालों पर लुढ़क गईं। दिल मेरा चुराया क्यों, व्हाई डिड यू ब्रेक। दिल को धड़कना तूने सिखाया, दिल को तड़पना तूने सिखाया, आंखों में आंसू छुपे थे कहीं, इनको छलकना तूने सिखाया, सीने में बसाया क्यों, दिल से जब खेलना ही था, हमसे दिल लगाया क्यों, व्हाई डिड यू ब्रेक। सॉन्ग पूरा भी नहीं हुआ था कि राधिका ने अपनी आंखें खोल दी। अपने आंसुओं को अपनी हथेली से पोंछते हुए उसने गहरी सांस भरी और गाना बदल दिया। शिकवा नहीं किसी से, किसी से गिला नहीं, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं, शिकवा नहीं किसी से, यादों की झिलमिलाती परछाइयों के दिन, कटते नहीं है तन्हा तन्हाइयों के दिन, है चाहतों का दिलकश अब सिलसिला नहीं, नसीब में नहीं था जो। राधिका के लब गाने के बोल गुनगुनाने लगे थे, चेहरा भावहीन था और मायूस लब खुद में ही सिमटे हुए थे। सीने में अजीब सी चुभन का एहसास हो रहा था और शायद अपने बेचैन दिल को वो कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी। गाना खत्म हुआ तो वो सर्द आह भरते हुए वापस कमरे में चली आई। फोन में सॉन्ग लगाकर वो बाथरूम में चली गई। आखिर मन कितना ही भारी हो, दिल कितना ही मायूस और दुखी हो, पर काम पर तो जाना ही था। जो जिम्मेदारियां थीं वो तो निभानी ही थीं। राधिका और माधव दोनों ही अपने दिल की बेचैनियों को अपने दिल में छुपाए अपने अपने डेली रूटीन में लग चुके थे। देखते देखते राधिका और माधव की इस मुलाकात को एक महीना बीत गया था। दोनों ही अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त चल रहे थे, एक दूसरे की यादों को भुलाने के लिए संघर्ष करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। दोपहर के 12 बज रहे थे, स्कूल में लंच का टाइम था। राधिका लंच के बाद फ्री हुई ही थी कि उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर अंजलि का नाम देखकर राधिका के मुरझाए लबों पर हल्की मुस्कान उभर आई। हेलो, कैसी है? राधिका ने मुस्कुराते हुए कॉल रिसीव की, पर दूसरी तरफ से अंजलि की गुस्से भरी आवाज आई। मैं तो फिलहाल जिंदा हूं, पर अगर तू आज मुझसे मिलने नहीं आई तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अंजलि की धमकी सुनकर राधिका की मुस्कान गहरा गई। क्या हो गया, आज इतनी भड़की हुई क्यों है तू? अब मैंने क्या कर दिया जो मेरी जान की दुश्मन बन गई है? राधिका की बात सुनकर अंजलि खींचते हुए उस पर बरस उठी। यही तो बात है कि तू कुछ करती ही नहीं है, तुझे मुझसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। मैं इतने दिनों से तुझे घर आने को कह रही हूं, पर मजाल है जो तूने एक बार भी मेरी सुनी हो। यार, टाइम नहीं मिलता। बदलते मौसम के साथ अर्पिता और पापा दोनों की तबीयत खराब चल रही है। पहले स्कूल, फिर घर की जिम्मेदारी, उन दोनों का ख्याल रखना, डॉक्टर के चक्कर लगाना, आसान नहीं एक साथ सब कुछ संभालना। मुझे दो पल चैन से बैठने की भी फुर्सत नहीं मिलती, राधिका ने संजीदगी से जवाब दिया। अंजलि के चेहरे पर भी गंभीर भाव उभर आए। जानती हूँ यार, पर तू मेरी बात भी तो समझने की कोशिश कर। यार आ जाना, एक बार तो मिल ले। कितनी मुश्किल से तो मुझे वापस यहाँ आने का मौका मिला है। अगर अब की बार चली गई तो अगले 5-6 महीने तक यहाँ का चक्कर नहीं लगेगा। इतना वक्त हो गया यार हमें मिले हुए। शादी में भी मैं तुझसे ठीक से बात तक नहीं कर सकी थी। कितना कुछ बताना है मुझे तुझे, पर ना तेरे पास फोन पर बात करने का वक्त होता है और ना ही मिलने आती है। हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर बात टाल देती है। मुझे यहाँ आए 15 दिन हो गए, पर अभी तक तू एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आई। आई है। प्लीज नखरे मत दिखा और आ जा घर, फिर पता नहीं ऐसा मौका दोबारा कब मिले। वैसे भी कार्तिक आए हुए हैं अभी मुझे लेने, आज यहीं ठहरेंगे, तुझसे मिलना भी चाह रहे थे। आएगी तो मेरे साथ साथ उनसे भी मिल लेगी, और देख इस बार मैं तेरा कोई बहाना नहीं सुनूंगी। मुझे नहीं पता कि तू कैसे टाइम निकालेगी, पर तुझे आज शाम को मुझसे मिलने आना ही होगा। और अगर तू नहीं आई तो आज के बाद दोबारा कभी मुझसे बात मत करियो, समझ लियो कि मर गई तेरी दोस्त। उसे इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए अंजलि ने उस पर आने के लिए दबाव बनाया। राधिका के चेहरे पर लाचारी और नाराजगी के भाव उभर आए। कोशिश करती हूँ आने की, पर तू ऐसी बकवास कभी अपने मुंह पर मत लाइयो, मरे तेरे दुश्मन। अभी तो तूने अपनी जिंदगी के नए सफर की शुरुआत ही की है, भगवान करे तुझे मेरी भी उम्र लग जाए। अपनी दोस्त को अपने लिए परेशान होते देखकर अंजलि मुस्कुरा उठी। चल नहीं कहूंगी दोबारा कभी ऐसा, पर तुझे आज शाम को घर आना है, याद रखना। कोई बहाना नहीं सुनूंगी आज मैं तेरा, अगर तू मुझे दोस्त मानती है तो तुझे आना ही होगा। दोनों ने कुछ और देर बात की, फिर लंच खत्म हुआ तो राधिका शाम को मिलने का कहकर अपनी क्लास में चली गई। शाम को मन ना होते हुए अंजलि के इतना बोलने की वजह से राधिका बेमन से तैयार होकर उसके घर के लिए निकल गई। उसने डोरबेल बजाई, दरवाजा आंटी ने खोला। उन्होंने बड़ी ही गर्मजोशी से उसका स्वागत किया और उसे अपनी ममता भरे आंचल में छुपाते हुए अपना स्नेह भरा हाथ उसके सर पर रख दिया। राधिका कुछ भावुक जरूर हुई, पर अपने छुपाते हुए मुस्कुरा दी। उनसे मिलने के बाद वो अंदर आई तो ड्राइंग रूम में पहले से मौजूद माधव को देखकर उसके आगे बढ़ते कदम ठिठक गए और आंखें बेयकीनी से फैल गईं। इतने में अंजलि की नजर उस पर भड़ी और वो मुस्कुराते हुए उठकर उसकी ओर बढ़ गई। राधु, अच्छा हुआ तू आ गई, हम तेरा ही इंतजार कर रहे थे। अंजलि की आवाज कानों से टकराई तो ध्यान माधव पर से हटा। दोनों सहेलियां मुस्कुराते हुए एक दूसरे से गले लग गईं। फिर अंजलि ने उसका हाथ पकड़ा और बाकी सबके पास ले आई। आजा चल बैठ, आज हम सब ढेर सारी बातें करेंगे और खूब इंजॉय भी करेंगे। हेलो राधिका जी, कैसी हैं आप? कार्तिक खुशदिली से उससे मुखातिब हुआ। जवाब में राधिका भी मुस्कुरा दी। हेलो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए शादी के बाद आपकी जिंदगी कैसी कट रही है? कहीं मेरी दोस्त आपको ज्यादा तंग तो नहीं करती? राधिका ने तिरछी नजरों से अंजलि को देखा, जो मुंह फुलाए नाराजगी से उसे घूरने लगी थी, और शरारत से मुस्कुरा दी। उसका सवाल सुनकर कार्तिक ने एक नजर अंजलि को देखा और सौम्य सी मुस्कान लबों पर बिखेरते हुए जवाब दिया, आपकी दोस्त के साथ हमारी जिंदगी भी बढ़िया कट रही है, इनफैक्ट उनका साथ पाकर लाइफ पहले से ज्यादा दिलचस्प हो गई है। कार्तिक का जवाब सुनकर राधिका के साथ साथ अंजलि और माधव भी मुस्कुरा उठे। राधिका जी, ये याद है आपको, शादी में मिलवाया था आपको इससे, मेरा दोस्त माधव, जो आपको घर तक छोड़ने गया था। कार्तिक ने राधिका का ध्यान माधव की ओर खींचा, जिसे वो नजरअंदाज करने की कोशिश में लगी थी, पर अब ऐसा कर न सकी और फीकी सी मुस्कान लबों पर बिखेरते हुए उसने हामी भर दी। जी, आज हमने सोचा कि मौका भी है और दस्तूर भी, तो चारों साथ में एंजॉय करें, कुछ बातें भी हो जाएंगी और हंसी मजाक भी कर लेंगे, इसके साथ जान पहचान भी बढ़ जाएगी, आपको इससे कोई एतराज तो नहीं?
नहीं, राधिका ने उसके सवाल पर सहजता से इनकार में सर हिला दिया, जबकि उसका यहाँ एक पल भी ठहरने का मन नहीं था। वो जितना माधव से दूर जाने की कोशिश करती थी, किस्मत उतना ही उन्हें एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर देती थी। खैर, अपने मनोभावों को छुपाते हुए उसने कैजुअल अंदाज में माधव से हालचाल किया। बातें शुरू हुईं तो फिर चलती ही चली गईं। खाने पीने के बीच हंसी मजाक भी खूब हुआ और एक दूसरे की टांग भी खूब खींची गई। राधिका इस दौरान माधव से बचती ही नजर आई। दोनों अनजान बने हुए थे और उनके बीच ना के बराबर ही बात हुई थी। बातों बातों में कब वक्त निकल गया, किसी को इसका एहसास ही नहीं हुआ। अंजलि ने राधिका को डिनर के लिए और रोक लिया और इन सब में रात के 10 बज गए। बाहर अंधेरा घिराया था और अब राधिका की परेशानी बढ़ गई थी। अंजलि और कार्तिक तो आज उन्हें भेजने के मूड में ही नहीं लग रहे थे, पर टाइम देखते हुए माधव और राधिका ने जाने की बात कही और दोनों उन्हें छोड़ने बाहर तक आए। राधिका जी, इतनी रात को आप अकेली ही जाएंगी? आपके पति नहीं आएंगे आपको लेने? माधव ने रात के अंधेरे को देखते हुए अब जाकर राधिका से कुछ बात की थी। नॉर्मल सी बात थी और राधिका जवाब देने ही वाली थी कि उससे पहले अंजलि चौंकते हुए आश्चर्य से माधव को देखने लगी। कौन सा पति? उसका तो सालों पहले डिवोर्स हो गया।